Om Shanti. Good morning. आज है वसंत पंचमी. ऐसे तो ये एक प्राकृतिक त्योहार है. आज के दिन ये विद्या, कला और संगीत की देवी माँ सरस्वती की पूजा करते हैं. स्कूलों में, मंदिरों में. आज के दिन ऐसे कहते हैं शास्त्रों में कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि रची तो ज्ञान और वाणी देने के लिए मां सरस्वती को प्रकट किया, जो इस संगम युग का ही यादगार है. आज के दिन पीले रंग का महत्व होता है. पीले वस्त्र पहनते, पीले फूलों से मंदिर में श्रृंगार होता और पीले व्यंजन बनाकर खाते और भोग धराते. एक मास से जो मल मास चल रहा था वो आज से शुभ कार्य के लिए खुल जाता है, आरंभ हो जाता है. और विशेष रूप से मां सरस्वती से बुद्धि विद्या की कामना करते हैं, इसलिए बच्चों को स्कूल का एडमिशन विशेष रूप से आज ही दिलाते हैं. तो ऐसे पर्व का आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना. ऐसे तो संगम युग का ही यादगार है. बाबा ने ही विश्व को ज्ञान देने के लिए, बुद्धि देने के लिए देवियों को तैयार किया है. ऐसे देखो बाबा अभी कई दिनों से मुरली में विशेष रूप से धारणा के ऊपर बताते हैं. कल की मुरली में भी बाबा ने सभी बच्चों को कुछ मर्यादाएं और धारणा की बातें बताई थी, जो हम सब ने अंडरलाइन किया. आज भी बाबा ने विशेष धारणा के लिए जोर दिया है और दूसरी बात भक्ति और ज्ञान का कंट्रास्ट, कलयुग और सतयुग का कंट्रास्ट बताया है. कुछ मनन चिंतन करने के लिए बहुत सुंदर सुंदर पॉइंट्स भी दिए हैं. तो बाबा टीचर रूप में हमें क्या क्या शिक्षाएं देते हैं वो हम सुनेंगे. ओम शांति. मीठे बच्चे, आज तो ऐसे 23/1/2026 की मुरली है, शुक्रवार है. मीठे बच्चे, तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलने चाहिए. कल भी बाबा ने कहा ना, मुख से बॉम्ब नहीं निकालना है, तो आज भी बाबा ने इसी को अंडरलाइन किया. तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलने चाहिए. तुम्हारा मुखड़ा सदैव हर्षित रहना चाहिए। प्रश्न है, जिन बच्चों ने ब्राह्मण जीवन में ज्ञान की धारणा की है, उनकी निशानी क्या होगी? वो ज्ञान की धारणा भी है और ब्राह्मण जीवन की धारणा भी है, जो ब्राह्मण बने हैं सच्चे ब्राह्मण, उनके जीवन में ऐसे तो बहुत निशानियां हैं, लेकिन आज बाबा ने चार निशानियां विशेष बताई है जो हम अंडरलाइन करेंगे। पहली, उनकी चलन देवताओं मिसल होगी, उनमें दैवी गुणों की धारणा होगी। दूसरा, उन्हें ज्ञान का विचार सागर मंथन करने का अभ्यास होगा। तीसरा, उसी में बाबा ने बताया, वे कभी आसुरी बातों का अर्थात किचड़े का मंथन नहीं करेंगे, अर्थात व्यर्थ बातों का नहीं करेंगे। तीसरा, उनके जीवन से गाली देना और ग्लानी करना बंद हो जाता है। अगर ये दो बातें हैं तो हम सच्चे ब्राह्मण नहीं हैं। चौथा, उनका मुखड़ा सदा हर्षित रहता है। तो ये चार डेफिनेशन बताई है, तो हम चेक करेंगे कि हमारे में कितने परसेंट में ये बातें हैं और हम कहां तक सच्चे ब्राह्मण बने हैं। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं ज्ञान और भक्ति के ऊपर। ये तो बच्चे समझ गए हैं, भक्ति से सद्गति नहीं होती है और सतयुग में भक्ति नहीं होती है। ज्ञान भी सतयुग में मिलता नहीं, क्योंकि हमें पता है कि हम ज्ञान से ही सतयुग में गए तो वहां आवश्यकता नहीं है। तो बाबा कहते हैं ज्ञान भी सतयुग में मिलता नहीं। श्री कृष्ण न भक्ति करते हैं न ज्ञान की मुरली बजाते हैं। क्यों नहीं बजाते? लोग तो दिखाते हैं श्री कृष्ण ने मुरली बजाई, तो ये संगम युग में बजाई, संगम युग का यादगार है। सतयुग में मुरली बजाने की जरूरत नहीं है। मुरली माना ही ज्ञान देना, मुरली माना ज्ञान, तो सतयुग में ज्ञान की आवश्यकता नहीं। गायन भी है ना मुरली में जादू, तो जरूर कोई जादू होगा ना। सिर्फ मुरली बजाना वो तो कॉमन फकीर लोग भी बजाते हैं। आज भी देखो कई जगह पर चलते फिरते मुरली बजाने वाले दिखते हैं, लेकिन इस मुरली में है ज्ञान का जादू। सिर्फ मुरली बजाना नहीं, अज्ञान को जादू तो नहीं कहेंगे, मुरली को जादू कहते हैं। मनुष्य से देवता बनते हैं ज्ञान से। जब सतयुग है तो इस ज्ञान का वर्षा है, उसका हमें फल मिलता है, उसकी प्रारब्ध मिलती है। वहां भक्ति होती नहीं, भक्ति होती है द्वापर से। जबकि देवता से मनुष्य बन जाते हैं, मनुष्यों को विकारी देवताओं को निर्विकारी कहा जाता है। देवताओं की सृष्टि को पवित्र दुनिया कहा जाता है। अभी तो देवता बन रहे हो। ज्ञान किसको कहा जाता है? बाबा ने पूछा है, ज्ञान किसको कहा जाता है? भक्ति तो करते हैं, वो दिखाई पड़ती है, लेकिन ज्ञान किसको कहा जाता है? एक तो स्वयं की व बाप की पहचान, और फिर सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज को ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान से होती है सदगति, फिर भक्ति शुरू होती है तो उतरती कला कहा जाता है। क्यों? भक्ति शुरू होती है, वहां से उतरती कला होती है। क्यों? क्योंकि भक्ति को रात, ज्ञान को दिन कहा जाता है। ये तो कोई की भी बुद्धि में बैठ सकता है, परंतु बाबा कहते ज्ञान तो सहज है। ज्ञान सुनाओ, आत्मा का ज्ञान दो, परमात्मा का ज्ञान दो, सृष्टि का ज्ञान दो, वो तो बुद्धि में बैठ जाता है। परंतु बाबा कहते दैवी गुण धारण नहीं करते हैं, वो थोड़ा मुश्किल लगता है, पुरुषार्थ मांगता है। बाबा कहते दैवी गुण हो तो समझा जाए ज्ञान की धारणा है, अगर दैवी गुण नहीं है माना ज्ञान नहीं है। ज्ञान की धारणा वालों की चलन देवताओं मिसल होगी, कम धारणा वाले की चलन, जिसको कम ज्ञान है उसकी चलन मिक्स रहती है। अब मिक्स चलन किसको कहते हैं वो सोचना। मिक्स माना कभी अच्छे भी रहेंगे, कभी कोई गलती भी करेंगे, कभी कोई मर्यादा भी चुकेंगे, कभी नियमों का भंग होगा, कभी पुरुषार्थ में उड़ते चलेंगे, कभी देखो तो मायूस हो जाएंगे। कम धारणा वालों की चलन मिक्स रहती है। धारणा नहीं, बाबा ने स्पष्ट कहा है, ये अंडरलाइन है, धारणा नहीं गोया वो बच्चे ही नहीं, ये बाबा ने स्ट्रांग कहा कि धारणा नहीं माना वो बच्चे ही नहीं। मनुष्य बाप की कितनी ग्लानि करते हैं, ब्राह्मण कुल में आते हैं, जब ब्राह्मण कुल में आ गए, सच्चे ब्राह्मण बन गए, तो क्या करना है? पहले आते ही कौन सी धारणा अपनानी है? ब्राह्मण कुल में आते हैं तो गाली देना और ज्ञानी करना बंद हो जाता है। तुमको ज्ञान मिलता है, उस पर अपना विचार सागर मंथन करने से अमृत मिलेगा। अभी ये जो बाबा ने पॉइंट्स दिया, उन बातों को हम विचार सागर मंथन करते हैं तो अमृत निकलेगा कि हमारे में कितनी धारणा है, हम कितने ब्राह्मण बने हैं, अभी कितना और गैलप करना है, तो ये अमृत निकलेगा। विचार सागर मंथन ही नहीं करते तो बाकी क्या मंथन होगा? फिर तो व्यर्थ चिंतन होगा, पर चिंतन होगा, यहां वहां की बातें होगी। बाबा कहते विचार सागर मंथन ही नहीं करते तो बाकी क्या मंथन होगा? आसुरी विचार, उनसे किचड़ा ही निकलेगा। विचार सागर मंथन से अमृत निकलेगा और व्यर्थ चिंतन से किचड़ा निकलेगा। अभी तुम ईश्वरीय स्टूडेंट हो, जानते हो मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। देवताएं ये पढ़ाई नहीं पढ़ाएंगे। अभी पढ़ाई जाती है सतयुग में देवताएं, ये पढ़ाई नहीं पढ़ाएंगे। हाँ, प्रिंस प्रिंसेस स्कूल तो जाएंगे, उनको राज विद्या या संगीत या और आर्ट सिखाएंगे, लेकिन ये ज्ञान नहीं सिखाया जाएगा। देवताओं को कभी ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता। ज्ञान का सागर तो एक को ही कहा जाता है। इसलिए बाबा रोज रोज ज्ञान का सागर है, तो इस बातों को नए नए रूप से हमें समझाते रहते हैं। दैविक गुण भी ज्ञान से धारण होते हैं। ये ज्ञान जो तुम बच्चों को अभी मिलता है, ये सतयुग में नहीं होता। इन देवताओं में दैवी गुण है, तुम महिमा भी करते हो, देवताओं की महिमा करते हैं ना, सर्व गुण संपन्न, सोले कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। जब वो बन गए तो फिर ज्ञान की क्या आवश्यकता। तो अभी तुमको ऐसा बनना है। अपने से पूछना चाहिए, क्या पूछना चाहिए, हमारे में सब दैवी गुण है या कोई आसुरी अवगुण है। बाबा ने होमवर्क दिया आज की मुरली से चेकिंग करने के लिए, कि अपने आप से पूछना चाहिए हमारे में सब दैवी गुण है या कोई आसुरी गुण है। अगर आसुरी अवगुण है तो उसको निकाल देना चाहिए, तब ही देवता कहेंगे। नहीं तो कम दर्जा पा लेंगे। अभी बाबा ने बहुत सुंदर उसकी और डेफिनेशन ब्राह्मणों की बताई है। अभी तुम बच्चे दैवी गुण धारण करते हो, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हो, सबको सुनाते हैं ना ज्ञान, हर बच्चा सुनाता है, सबको सुनाना आता है और अच्छे अच्छे ढंग से सुनाते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम सबको अच्छी अच्छी बातें सुनाते हो, इसको ही कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। जबकि तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो तो वातावरण भी बहुत अच्छा होना चाहिए। ज्ञान की बातें करेंगे, ज्ञान का चिंतन करेंगे, तो नेचुरली वातावरण भी अच्छा ही रहेगा। और व्यर्थ बातें करेंगे, परचिंतन करेंगे, तो उसमें फिर वातावरण भी दूषित होता है, लौकिक हो जाता है। मुख से कोई भी छीछी बात न निकले, ये बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, मुख से कोई भी छीछी बात न निकले, नहीं तो कहा जाएगा ये कम दर्जे का है। बोलचाल और वातावरण से झट पता पड़ जाता है। ऐसे भी कहते हैं ना कि कोई बोलता कैसे है, उससे उसका कुल का पता चल जाता है, उसके एजुकेशन का पता चल जाता है, उसकी सोसाइटी का पता चल जाता है। नहीं तो पता कैसे पड़ेगा, कोई चुप रहेगा, शांत रहेगा, कम माना बातचीत ही नहीं करेगा, तो उसके बारे में आप जल्दी समझ नहीं सकते हो, पता नहीं पड़ेगा। जब कोई आपके व्यवहार में आता है, बातचीत करता है, तो पता पड़ता है कि इसकी क्वालिटी क्या है। तुम्हारा मुखड़ा सदैव हर्षित होना चाहिए, नहीं तो उनमें ज्ञान नहीं कहा जाएगा। कोई मुरझाया हुआ रहता है, उदास रहता है, तो कहेंगे इसमें ज्ञान नहीं है। मुख से सदैव रतन निकले। ये लक्ष्मी नारायण देखो कितने हर्षित मुख है। इनों की आत्मा ने ज्ञान रतन धारण किए थे। मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलते हैं। रत्न ही सुनते सुनाते कितनी खुशी रहती है। सारा दिन ज्ञान सुनाओ, जितना ज्ञान सुनाओ तो खुशी होती। कोई हमारा ज्ञान अंडरस्टैंड करता है, समझता है, या वो एक्सेप्ट करता है, तो हमको खुशी होती है कि हमने समझाया, देखो इसकी सेवा हुई, ये समझ गया। ऐसे ज्ञान रत्न जो अभी तुम लेते हो, फिर ये सभी हीरे जवाहरात बन जाते हैं। वाह, बाबा ने इसको कहा जितने आप ज्ञान रत्न बोलते हो वो भविष्य में हीरे जवाहरात बन जाते हैं। तो अभी हमें काउंट करना है कि फ्यूचर में, भविष्य में, सतयुग में हमें कितने हीरे जवाहरात मिलेंगे। बाबा कहते नौ रत्नों की माला कोई हीरे जवाहरात की नहीं है, इन ज्ञान रत्नों की माला है। वो दिखाते बल रुद्राक्ष की माला है, मोती दिखाते हैं, लेकिन बाबा कहते ये ज्ञान रत्नों की माला है। मनुष्य लोग भी वो रत्न समझ अंगूठियां आदि पहन लेते हैं। कहते हैं ना नौ रत्नों की अंगूठी, नौ धातु की अंगूठी। इन ज्ञान रत्नों की माला पुरुषोत्तम संगम युग पर पड़ती है। डिसाइड तो अभी होंगे ना, माला के मण के बनेंगे तो अभी से। ये रत्न ही तुमको भविष्य 21 जन्मों के लिए माला माल बनाते हैं। जितने ज्ञान रत्न हम निकालते जाएंगे, इतने सतयुग में माला माल बनेंगे। आज बाबा ने ये रहस्य बताया है, भविष्य में हमें कितने हीरे जवाहरात मिलेंगे, हम कितने माला माल करेंगे, उसका आधार क्या है। ये रत्न ही तुमको भविष्य 21 जन्मों के लिए माला माल बनाते हैं। इसको कोई लूट न सके। यहाँ तुम ये हीरे जवाहरात पहनो तो जट कोई लूट ले जाए। आजकल कर कितनी चोरियां आदि होते हैं ना, इसलिए लोग सोने का बैज पहनने से भी डरते हैं कि कोई चोर लूट ना जाए, क्योंकि सोना कितना महंगा है। इसलिए सोने का बैज होते हुए भी आर्टिफिशियल बैज पहनते हैं। तो अपने को बहुत बहुत समझदार बनाना है, आसुरी अवगुणों को निकालना है। आसुरी अवगुणों से क्या होता है, बाबा ने उसकी निशानी बताई है। आसुरी अवगुणों से शक्ल ही ऐसी हो जाती है। कैसी हो जाती है, कल भी बताया, क्रोध में लाल लाल तांबे जैसी शक्ल हो जाती है। काम विकार वाले तो काले बन जाते हैं और क्रोध वाले तांबे जैसे बन जाते हैं। तो तो बच्चों को हर बात में विचार सागर मंथन करना चाहिए। ये पढ़ाई है ही बहुत धन पाने की, स्थूल धन पाने की नहीं, ये ज्ञान धन पाने की। वो पढ़ाई कोई रत्न थोड़ी है, जो दुनिया में पढ़ाई पढ़ते हैं बाबा कहते हैं वो रत्न नहीं है, वो तो सोर्स ऑफ इनकम है। ये ज्ञान की पढ़ाई को रत्न कहा जाता है। हाँ, नॉलेज पढ़कर बड़ा पोजीशन पा लेते हैं, अच्छी नौकरी मिल जाती है, तो पढ़ाई काम आई न कि पैसा। पढ़ाई ही धन है, लेकिन आजकल तो पढ़ाई के लिए भी बहुत डोनेशन देना पड़ता है, बहुत पैसा देना पड़ता है, तब डिग्री मिलती है। जब डिग्री मिलेगी तो जॉब मिलेगी। वो है हद का धन, फिर ये है बेहद का धन। है दोनों पढ़ाई, लौकिक की भी पढ़ाई है लेकिन ये भी पढ़ाई है। तो बाबा बताते हैं इस पढ़ाई का क्या महत्व है, उस पढ़ाई से भी इस पढ़ाई का बहुत महत्व है। अभी तुम समझते हो बाप हमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बना देते हैं, वो अल्पकाल क्षण भंगुर की पढ़ाई है एक जन्म के लिए। कितने भी पीएचडी भी करेंगे, आईसीएस भी बनेंगे, कितना भी बड़ा पोजीशन मिलेगा, लेकिन एक जन्म के लिए। फिर दूसरे जन्म में नए से पढ़ना पड़े, वहां धन के लिए पढ़ाई की दरकार नहीं। सतयुग में पढ़ाई पढ़ेंगे लेकिन वो धन के लिए, कमाने के लिए नहीं। किस लिए पढ़ेंगे? राज विद्या, संगीत, कोई कला। वहां तो अभी के पुरुषार्थ से अकीचार माना अथाह धन मिल जाता है, धन अविनाशी बन जाता है। देवताओं के पास धन बहुत था, फिर जब भक्ति मार्ग अर्थात रावण राज्य में आए तो कितना था? बाबा कहते इतना तुमको अभी के पढ़ाई से धन मिला, वो द्वापर युग तक भी चला। उसी धन से हमने बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाए, बहुत पूजाएं की, भक्ति की, वो सब अभी की कमाई से किया। देवताओं के पास धन बहुत था, फिर जब भक्ति मार्ग अर्थात रावण राज्य में आए तो कितना था? कितने मंदिर बनाए हुए हैं? फिर आकर के मुसलमानों आदि ने धन लूटा, कितने धनवान थे। आज की पढ़ाई से इतना धनवान कोई बन न सके। बाबा कहते कितने भी पढ़ लो, कितनी भी डिग्रियां ले लो, लेकिन इतना धनवान कोई नहीं बन सकता। पढ़ाई से अभी तुम जानते हो हम इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ते हैं जिससे ये देवी देवता बनते हैं। तो पढ़ाई से देखो मनुष्य क्या से क्या बन जाते हैं, गरीब से शाहूकार बन जाते हैं। तो इस पढ़ाई से बनते हैं, उस पढ़ाई से नहीं, क्योंकि देखा गया है उस पढ़ाई में कईयों ने कुछ नहीं पढ़ा है तो भी बिजनेस करके बहुत धनवान बन जाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि वो पढ़ाई से धन ही प्राप्त हो, लेकिन ये धन बिना पढ़ाई से नहीं मिलेगा। अभी भारत भी कितना गरीब है, शाहूकारों को तो फुर्सत ही नहीं है, अपना अहंकार रहता है मैं फलाना हूं। मैं इस कंपनी का, मेरे पास इतनी कंपनियां हैं, इतनी इंडस्ट्री है, मेरा इतना नंबर है, तो वो थोड़ा कॉन्शियस रहता है। इसमें अहंकार आदि मिट जाना चाहिए। वो तो ज्ञान लेंगे तो अहंकार मिटेगा। हम आत्मा हैं, आत्मा के पास तो धन दौलत हीरे जवाहरात आदि कुछ भी नहीं है। अगर आत्मा बन जाओ, बिंदु बन जाओ, तो कुछ है भी नहीं और कुछ चाहिए भी नहीं। बाप भी कहते हैं, देह सहित सब संबंध छोड़ो। आत्मा शरीर छोड़ती है तो शवकारी आदि सब खत्म हो जाता है। फिर एक ही जैसा कोई गरीब भी शरीर छोड़ेगा या कोई धनवान भी छोड़ेगा तो एक जैसा ही होगा। जब नए सिर पढ़कर फिर धन कमावे या तो दान पुण्य अच्छा किया हो तो साहूकार के घर जाकर जन्म लेंगे। वो फिर इतना जो धनवान है अभी, उन्होंने दान किया होगा, कुछ हॉस्पिटल बनाते हैं, कॉलेज बनाते हैं, धर्मशालाएं बनाते हैं, तो समझते हैं हमको अगले जन्म में मिलेगा, अच्छे घर में जन्म मिलेगा। कहते हैं ना, पास्ट के कर्मों का फल है। कोई अच्छे घर में जाता है या किसी को अच्छा धन मिलता है, अच्छी पोजीशन मिलती है, तो कहेंगे ये अगले जन्म का फल है। नॉलेज का दान किया होगा व कॉलेज धर्मशाला आदि बनाई है तो उसका फल मिलता है, परंतु अल्पकाल के लिए। ये दान पुण्य भी यहां किया जाता है, सतयुग में नहीं किया जाता है। क्यों सतयुग में दान पुण्य नहीं होगा? क्योंकि वहां सब धनवान होंगे। सतयुग में अच्छे ही कर्म होते हैं, क्योंकि अभी का वर्षा मिला हुआ है, वहां कोई का भी विकर्म होता नहीं क्योंकि रावण ही नहीं है। गरीबों का भी विकर्म नहीं बनेगा। सतयुग में गरीब होंगे क्या? बाबा कहते हैं सतयुग में गरीबों का भी विकर्म नहीं बनेगा। गरीब बना राजा महाराजाओं की भेंट में, कोई दास दासियां हैं या कोई प्रजा है उसकी कंपेयर में। यहाँ तो शवकारों के भी विकर्म बनते हैं, तब तो ये बीमारियां आदि दुख होते हैं। वहां विकार में जाते ही नहीं तो विकर्म कैसे बनेंगे? सारा मदार है कर्मों पर। ये माया रावण का राज्य है जो मनुष्य विकारी बन जाते हैं। बाप आकर पढ़ाते हैं निर्विकारी बनाने लिए। बाप निर्विकारी बनाते हैं, फिर माया फिर विकारी बना देती है। राम वंशी और रावण वंशी की युद्ध चलती है। अभी हम सब युद्ध के मैदान पर हैं। तुम बाप के बच्चे हो, वो रावण के बच्चे हैं। कितने अच्छे अच्छे बच्चे माया से हार खा लेते हैं, बाबा को भी आश्चर्य होता है। माया बड़ी प्रबल है, फिर भी उम्मीद रखते हैं। बाबा कहते हैं फिर भी उम्मीद रखते हैं। क्या उम्मीद रखते हैं बाबा? कि घूम फिर के वापस आ जाएगा, फिर से जाग जाएगा। अधम से अधम माना बिल्कुल पतित का भी उद्धार करना होता है ना। बाप को तो सारे विश्व का उद्धार करना होता है, बहुत गिरते हैं, एकदम चट खाते में अधम से अधम बन जाते हैं। बाबा का बनते हैं, लेकिन माया ऐसी एकदम नीचे गिरा देती है। ऐसे का भी बाप उद्धार करते हैं। बाबा ने आंसर दिया है। कई लोग कहते हैं ना, अरे ये तो चलता था, फिर चला गया, फिर उसको क्यों यहाँ आने देते हैं, उनको क्यों लिफ्ट दी जाती है? तो बाबा आंसर देते हैं, उनका भी उद्धार करते हैं। अधम तो सब है रावण राज्य में, परंतु बाप बचाते हैं, फिर भी गिरते रहते हैं तो बहुत अधम बन जाते हैं। उनका फिर इतना चढ़ना नहीं होता है। जो पहले शुरू में आए, ज्ञान लिया, उमंग में आगे बढ़े, वो फिर पावर थोड़ी कम होती है, वह अधम पना अंदर खाता रहता है, अंदर अफसोस रहता है कि मैंने इतना बीच का समय व्यर्थ क्यों किया। जैसे तुम कहते हो, अंत काल जो सिमरे ऐसी योनि वलवल उतरे, तो उनकी बुद्धि में वो अधम पना ही आता रहेगा, अफसोस ही होता रहेगा, तो फिर पद भी ऐसा ही पाएंगे। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, कल्प कल्प तुम ही देवता बनते हो, जानवर बनेंगे क्या? हमको ही बनना है, इसलिए बाबा कहते हैं, तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? मनुष्य ही बनते हैं और समझते हैं। इन लक्ष्मी नारायण को भी नाक कान आदि है, मनुष्य है ना, परंतु दैवी गुण वाले हैं, इसलिए इनको देवता कहा जाता है। यह ऐसा सुंदर देवता कैसे बनते हैं, फिर कैसे गिरते हैं, इस चक्र का तुमको मालूम पड़ गया है। जो विचार सागर मंथन करते होंगे, उनको धारणा भी अच्छी होगी। फिर से बाबा इस पॉइंट पर आए, धारणा की। विचार सागर मंथन ही नहीं करते तो क्या होगा? तो बाबा कहते, बुद्धू बन पड़ते। माना बुद्धि डल हेड हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। मुरली चलाने वाले का विचार सागर मंथन चलता रहेगा, माना जो दूसरों को ज्ञान देते हैं उनका विचार सागर मंथन चलता रहेगा। इस टॉपिक पर ये समझाना है, ऑटोमेटिकली विचार सागर मंथन चलता रहे। फलाने आने वाले हैं, उनको भी उल्लास से समझाएंगे। कोई वीआईपी आने वाला है तो पहले से बुद्धि चलती है कि हमें उनके साथ क्या क्या ज्ञान बताना है। हो सकता है कुछ समझ जाए, भाग्य पर है। कोई झट निश्चय करेंगे, कोई नहीं करेंगे। उम्मीद रखी जाती है। क्या उम्मीद रखी जाती है? कि अभी नहीं तो आगे चलकर समझेंगे जरूर। उम्मीद रखनी चाहिए ना। पहले से ही कहेंगे, अरे ये तो बहुत बड़ा है वीआईपी, ये कोई समझने वाला थोड़े ही है, या कहेंगे अरे ये तो शास्त्रों का बहुत पढ़ा हुआ है, ये नहीं समझेगा। तो पहले ही हमने उम्मीद छोड़ दी तो फिर हमारा समझाने में वो बल नहीं रहता है, ताकत नहीं रहती है। उम्मीद रखना माना सर्विस का शौक है, थकना नहीं है। भल कोई पढ़कर फिर अधम बना है, आता है तो जरूर उसको विजिटिंग रूम में बिठाएंगे ना, उनसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे, वह कहेंगे चले जाओ, बाबा कहते हैं उसको बिठाएंगे, बातचीत करेंगे या कहेंगे चले जाओ, अरे तुमको तो पहले भी ज्ञान दिया था, तुम चला फिर चला गया, अभी वापस क्यों आया, ऐसे तो बोल नहीं सकते। जरूर पूछेंगे इतने दिन क्यों नहीं आए, कहेंगे माया से हार खा ली, ऐसे ढेर आते हैं। समझते हैं ज्ञान बहुत अच्छा था परंतु माया ने हरा दिया। स्मृति तो रहती है ना, भक्ति में तो हारने और जीतने की बात ही नहीं, वहां माया कुछ करती ही नहीं क्योंकि है ही माया में। ये नॉलेज धारण करने की है। अभी तुम बाप द्वारा सच्ची गीता सुनते हो जिससे देवता बनते हो, बिगड़ ब्राह्मण बने देवता बन नहीं सकते। क्रिश्चियन पारसी मुसलमानों में भी ब्राह्मण होते ही नहीं, ये सब बातें अभी तुम समझते हो। एक को याद करना है वो तुम जानते हो, एक को याद करने से ही बादशाही मिलती है। जब भी तुम कोई को मिलो बोलो अलफ अल्लाह को याद करो, एक को याद करो, एक को ही ऊंचा कहा जाता है, उंगली से एक का इशारा करते हैं ना। कोई भी धर्म पिता भी होगा वो एक पर उंगली ऊपर दिखाएगा, माना भगवान एक है, गॉड एक है, एक ही भगवान है, बाकी तो सब बच्चे हैं। बाप तो सदैव एक ही रहते हैं, बादशाही करते नहीं। बाबा कहता मैं एक ही ऊपर रहता हूँ, मैं बादशाही करता नहीं। ज्ञान भी देते हैं, अपना बच्चा भी बनाते हैं, तो बच्चों को कितनी खुशी में रहना चाहिए। बाबा हमारी कितनी सेवा करते हैं, हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर खुद उस नई पवित्र दुनिया में आते ही नहीं। बाबा इतनी हमारी सेवा करते, ऊंच बनाते, लेकिन खुद उस दुनिया में नहीं आते। पावन दुनिया में उसको कोई बुलाते ही नहीं। बाबा कहता है उस दुनिया में आप मुझे बुलाते ही नहीं, तो बुलाएंगे तो आएंगे थोड़ी, बुलाएंगे तो भी नहीं आएंगे बाबा। पावन दुनिया में आकर क्या करेंगे, बाबा कहते हैं मैं आऊं भी वहां सतयुग में तो आकर क्या करूं। उनका नाम ही शिव है, एक ही है, पतित पावन, तो पुरानी दुनिया को नया बनाने की उसकी ड्यूटी है। बाप का नाम है शिव, और शालिग्राम बच्चों को कहा जाता है, उनकी पूजा होती है, शिव बाबा के सब याद करते हैं। दूसरा ब्रह्मा को भी बाबा कहते हैं, वो हम कहते हैं ना, हमारे दो बाप हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कहते तो बहुत हैं, परंतु उसको यथार्थ रीति जानते नहीं। ब्रह्मा किसका बच्चा है तुम कहेंगे, परमपिता परमात्मा शिव ने उसको एडॉप्ट किया है, ये तो शरीरधारी है ना। ईश्वर की औलाद सब आत्माएं हैं, सब आत्माओं को अपना अपना शरीर है, अपना अपना पार्ट मिला है, तो बजाना ही है। ये परंपरा से चला आता है, अनादि अर्थात उसका आदि मध्य अंत नहीं। मनुष्य सुनते हैं एंड होती है तो फिर मूंछते हैं कि फिर कैसे बनेंगे, कहते हैं अभी विनाश होगा, विनाश अगर माना भी तो कहते हैं फिर नई दुनिया कैसे होगी, ये फिर सृष्टि कैसे चलेगी, फिर नए इंसान कैसे आएंगे, ये फिर बुद्धि में नहीं आता। बाप समझाते हैं ये अनादि है, कब बने हैं ये पूछने का ही नहीं रहता। प्रलय होती ही नहीं, परिवर्तन होता है, टोटल प्रलय नहीं होती। ये भी गपोड़ा लगा दिया है, थोड़े मनुष्य हो जाते हैं, इसलिए कहा जाता है जैसे प्रलय हो गई, माना प्रलय जैसा, विनाश जैसा। बाबा में जो ज्ञान है वो अभी ही इमर्ज होता है, इसके लिए ही कहते हैं बाबा के लिए क्या कहते हैं, बाबा की महिमा क्या गाते हैं, बाबा में इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है, इसकी महिमा क्या गाते हैं। सारा सागर शाही बनाओ, सारा जंगल कलम बनाओ, सारी पृथ्वी कागज बनाओ, तो भी पूरा नहीं होगा। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे शिकिल अधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य साग, सबकी बुद्धि में पूरी मुरली आ गई ना। पहली बात, अपने हर्षित मुखड़े से बाप का नाम बाला करना है। लोग पूछेंगे ना, आप इतने खुश क्यों रहते हो, तो फिर बाबा का नाम बाला होगा। ज्ञान रतन ही सुनने और सुनाने हैं, गले में ज्ञान रत्नों की माला पड़ी रहे, आसुरी अवगुणों को निकाल देना है। दूसरा, सर्विस में कभी थकना नहीं है, उम्मीद रख, शौक से सर्विस करनी है, विचार सागर मंथन कर उल्लास में रहना है। आज का वरदान बहुत अच्छा है, याद रह जाएगा। कंफ्यूज होने के बजाय लूज कनेक्शन को ठीक करने वाले समस्या मुक्त भव। कंफ्यूज होने के बजाय लूज कनेक्शन को ठीक करने वाले समस्या मुक्त भव। सभी समस्याओं का मूल कारण कनेक्शन लूज होना है। सिर्फ कनेक्शन को ठीक कर दो तो सर्व शक्तियां आपके आगे घूमेंगी। यदि कनेक्शन जोड़ने में एक दो मिनट लग भी जाते हैं तो हिम्मत हार कर कंफ्यूज ना हो जाओ। निश्चय के फाउंडेशन को हिलाओ नहीं। मैं बाबा का, बाबा मेरा, इस आधार से फाउंडेशन को पक्का करो तो समस्या मुक्त बन जाएंगे। स्लोगन है, बीज रूप अवस्था में स्थित रहना, यही पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने की विधि है। बीज रूप अवस्था में स्थित रहना, यही पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने की विधि है। अव्यक्त इशारे, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। हमने पूरा मास बहुत अच्छे अच्छे अनुभव किए होंगे, अभी एक हफ्ता बचा है, इसके लिए बाबा के पॉइंट्स को लेकर के फिर अनुभव करते रहेंगे। जब सेवा में वह अपने पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने में सफलता नहीं मिलती तो कोई न कोई विघ्न के वश हो जाते हैं, फिर उनसे मुक्त होने की इच्छा रखते हैं, लेकिन बिना शक्ति के ये इच्छा पूर्ण नहीं हो सकती। इसलिए अलंकारी रूप बनो, शक्ति रूप धारण करो तो बंधन मुक्त हो जाएंगे। तो आज वसंत पंचमी का ये वरदान भी मिला, इशारा भी मिला, शक्ति रूप धारण करो। अच्छा, ओम शांति। बाबा की याद में बैठेंगे।